समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी सुनने वालों का आज के न्यूज मैगजीन परिक्रमा में। स्टूडियो की घड़ी में शाम के ठीक 4:30 बजे हैं और हर दिन की तरह हम आपके साथ जुड़ चुके हैं परिक्रमा के आज के अंक के साथ। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, साथ ही हम आपको जोड़ेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के साथ भी, जो अपने अपने क्षेत्रों की खबरों से हमें रूबरू करवाएंगे। इसके अलावा आर्थिक जगत और खेल जगत की खबरों पर भी रहेगी हमारी नजर। उन विशिष्ट लोगों की भी बात होगी जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी शगुन। शगुन, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार देवेंद्र, हार्टफेल्ट हेलो एंड गुड आफ्टरनून लिसनर्स। वेल, यू आर ट्यून्ड टू परिक्रमा ऑन 100.1 FM विद शगुन चोपड़ा एंड देवेंद्र। एंड इन टुडेज प्रोग्राम फर्स्ट वी विल प्रोवाइड यू द लेटेस्ट न्यूज। Also, in our discussion segment, Dateline India, we'll be discussing about two really important topics. We also have reports and capsules because this is Parikrama, so we'll go on a Parikrama of different states which we have chosen specifically for you. We'll also give you business updates and our tributes at the end of this particular program. All of this over the next 30 minutes. We begin with the news headlines first.
जी, भारत ने अरुणाचल प्रदेश के स्थानों का नाम बदलने के चीन के प्रयासों को खारिज किया। कहा, इस तरह की कार्रवाई भारत की सुसंगत और सिद्धांतवादी रुख के सीधे विरोध में है।
ट्राई सर्विसेज चीफ्स ब्रीफ प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ऑन ऑपरेशन सिंदूर। प्रेसिडेंट सेज इंडियाज रिस्पॉन्स टू टेररिज्म अ रिमार्केबल सक्सेस।
पाकिस्तानी रेंजर्स द्वारा हिरासत में लिए गए सीमा सुरक्षा बल के जवान पूर्णम कुमार शाह भारत लौटे।
World's defense experts hail Operation Sindoor, describe it as decisive military victory.
न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश बने।
And in Thailand, badminton open, Indian shuttlers Akarshi Kashyap and Unnati Hooda advanced to women's singles pre-quarterfinals in Bangkok. And now we will be taking a look at the developments taking place at the national or global level in our segment Dateline India. And today first we'll talk about Ayurveda Day. Well, the announcement has been made. The government has officially designated 23rd September as Ayurveda Day. The Ayush Ministry stated that the change notified through a gazette notification marks a significant shift from the earlier practice of observing Ayurveda Day on Dhanteras.
आयुष मंत्रालय ने कहा, आयुर्वेद दिवस को हर साल आयुर्वेद को वैज्ञानिक साक्ष्य आधारित और समग्र चिकित्सा प्रणाली के रूप में बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है, जो निवारक स्वास्थ्य सेवा और कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि आने वाले दशक में धनतेरस की तारीख 15 अक्टूबर से 12 नवंबर के बीच व्यापक रूप में बदलती रहेगी, जिससे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समारोहों के आयोजन में तार्किक चुनौतियां आएंगी।
To address this inconsistency and establish a stable reference point for national and also global celebrations, the Ministry of Ayush constituted a committee to examine suitable alternatives. The expert panel proposed 4 potential dates, with 23rd September emerging as the preferred choice, and hence the date has been changed. This decision was guided by both practical and symbolic considerations.
और चुनी गई तिथि 23 सितंबर शरद विषु के साथ मेल खाती है, एक ऐसा दिन जब दिन और रात लगभग बराबर होते हैं। ये खगोलीय घटना प्रकृति में संतुलन का प्रतीक है, जो आयुर्वेदिक दर्शन के साथ पूरी तरह से मेल खाती है, जो मन शरीर और आत्मा के बीच संतुलन पर जोर देती है। ब्रह्मांडीय सामंजस्य का प्रतिनिधित्व करने वाला विषु आयुर्वेद के सार को रेखांकित करता है, प्रकृति के साथ संतुलन में रहना।
And Devendra, I'm sure that our listeners, they know that Ayurveda, India's traditional medicine, has been in practice for close to 3,000 years, a whopping 3,000 years, and has been serving the healthcare needs of millions of Indians.
जी, आयुर्वेद शब्द आयु और वेद से मिलकर बना है। आयु का अर्थ है जीवन, वेद का अर्थ है विज्ञान या ज्ञान, आयुर्वेद का अर्थ है जीवन का विज्ञान। आयुर्वेद में सभी जीवित चीजें शामिल हैं, चाहे वे मानव हों या गैर मानव। आयुर्वेद न केवल चिकित्सा की एक प्रणाली है, बल्कि इस पूर्ण सकारात्मक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक उपलब्धियों के लिए जीवन जीने का एक तरीका भी है। आयुर्वेद में निवारक और उपचारात्मक दोनों पहलू हैं।
Also adding to that, Devendra, the preventive component emphasizes the need for a strict code of personal and social hygiene.
Ji.
The details, they depend upon the individual, the climatic conditions and also the environmental needs. The curative aspects, now focusing on that, Ayurveda, the traditional medicine, involve the use of herbal medicines, external preparations, physiotherapy and diet. It is a principle of Ayurveda that the preventive and therapeutic measures be adapted to the personal requirements of each patient, as each individual is different.
Ji. और वर्तमान में भारत में आयुर्वेद में स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट की शिक्षा अच्छी तरह से विनियमित है. चिकित्सकों और निर्माताओं का एक सराहनीय नेटवर्क मौजूद है. निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास ने समुदाय तक पहुंच को सराहनीय तरीके से बेहतर बनाया है.
Yes, and now talking about the Ministry of Ayush. It was founded in the year 2014 and the ministry aims to revive ancient medical knowledge while supporting the UN Sustainable Development Goals and Universal Health Coverage.
जी, और ये मंत्रालय भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग से विकसित हुआ, जिसे 1995 में बनाया गया था और 2003 में इसका नाम बदलकर आयुष विभाग कर दिया गया था.
And Ayush, an acronym for the traditional medical systems practiced in India, Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Yunani, Siddha and Homeopathy. And also, we are also taking steps to promote traditional medicines. We have over 24 MOUs with countries and 48 institute-level MOUs and the Ayush Visa and Heal in India portal for medical tourism. Also, government introduced the Ayush Mark and Ayush Premium Mark certification programs for Ayush products.
जी, और शगुन, भारत ने गुजरात के जामनगर में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन GCTM की स्थापना के लिए 85 मिलियन अमेरिकी डॉलर की प्रतिबद्धता के साथ WHO के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर भी किए हैं. बुनियादी ढांचे के विकास, अनुसंधान और आयुष प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न सरकारी विभागों के साथ समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं.
Yes, Devendra. And the ministry has urged the citizens, health professionals, also academic bodies and international partners to embrace the newly designated date and actively participate in Ayurveda Day celebrations on 23rd September now, each year. Now moving on, we'll talk about the second topic which we have, the second dateline topic which we have today. Well, Chief of Defence Staff General Anil Chauhan, along with Army Chief General Upendra Dwivedi, Chief of the Air Staff, Air Chief Marshal A.P. Singh and Navy Chief Admiral Dinesh K. Tripathi today called on President Draupadi Murmu to brief her on Operation Sindoor. In a social media post, the President praised the valour and dedication of the armed forces, acknowledging their role in making India's response to terrorism a remarkable success.
Jee. पूरे देश की आंखें उन बहादुर जवानों के बलिदानों पर नम है. उन्हें हर कोई श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है, जिन वीर बलिदानियों ने मां भारती की सेवा में अपने को बलिदान कर दिया और अपनों से भी दूर चले गए.
मैं ना लौटा आने वाले साल जो मेरी वर्दी बोले मेरा हाल तो नैना अश्क ना हो ये समझना मैं हूँ मजबूर नैना अश्क ना हो नैना अश्क ना हो.
आज बात उस दर्दनाक घटना की जिसने पूरे देश को झकझोर दिया, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुआ आतंकवादी हमला जिसमें हमारे बहादुर जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी. ये हमला न केवल सुरक्षा बलों पर बल्कि भारत की संप्रभुता और शांति प्रियता पर भी हमला है. लेकिन भारत ने हमेशा ये साबित किया है कि वो न तो डरता है न ही झुकता है. हमले के बाद भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक कर आतंकवाद के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया. इस बार यह अभियान ऑपरेशन सिंदूर के नाम से चला, जिसमें कई आतंकवादियों को ढेर किया गया. ये ऑपरेशन केवल बदला नहीं बल्कि एक कड़ा संदेश भी है कि भारत अपनी सीमाओं और नागरिकों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है. लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार आतंकवाद कब रुकेगा, कब तक हमारे जवान शहीद होते रहेंगे और हम एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में क्या कर सकते हैं. हमारी प्रतिक्रिया यही है कि आज हर भारतवासी को एकजुट होकर न केवल अपने सुरक्षा बलों के साथ खड़ा होना होगा, बल्कि ऐसे विचारों को भी नकारना होगा जो देश को बांटने की कोशिश करते हैं। सोशल मीडिया पर जिम्मेदार व्यवहार, सेना के समर्थन में आवाज उठाना और फर्जी खबरों से बचना, ये छोटे कदम हैं जो बड़ा फर्क ला सकते हैं। ये समय है अपने देश के लिए, अपने वीर जवानों के लिए एकजुट होने का। परिक्रमा के लिए श्री विजयपुरम से मैं पूजा सिंह।
Well, very rightly said, and yes, we should stand firm and united with our soldiers. We take great pride in them, Devendra.
Right.
A soldier, not just a defender of borders, but a defender of the soul of the nation. They guard our national borders day in and night, and they sacrifice their lives to protect us from the attacks of enemies, our soldiers. Well, Indian soldiers are true patriots who devote their lives to upholding the pride of our nation.
ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़के तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा।
Well, soldiers during their service they are subjected to multiple encounters. That is the reason behind the vigorous training that they have to go through, right?
जी, भारतीय सैनिक बाहरी आक्रमण का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं, राष्ट्र की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, किसी भी बाहरी खतरे से निपटने को तत्पर रहते हैं, शांति अभियान चलाते हैं। हम सभी अपना जीवन सामान्य और सुखपूर्वक इसीलिए जी पाते हैं क्योंकि हम ये जानते हैं कि हमें दुश्मन या विदेशी हमलों से कोई खतरा नहीं है और सीमाओं पर हमारे बहादुर सैनिकों का पहरा है।
Our flag does not fly because the wind moves it. It flies with the last breath of each soldier who died protecting it.
तेरा हिमालय आकाश छूले बहती रहे तेरी गंगा ऊंचा हो इतना बुलंद हो तारों को छूमे तिरंगा माँ से है माटी माँ से है माथा माथे पे माटी सजा के चले आए चल।
The song definitely captures the emotion, the feeling of patriotism that
right.
a soldier has in himself and for the nation as well to protect us, to protect the civilians of the nation, right?
Gee.
Also for their profession, the soldiers do not get enough time to spend with their families. Yes, for every soldier, India comes first even before their own family because for these brave hearts, the whole country is their family.
बिल्कुल ठीक कहा आपने। एक सैनिक अपने देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान करने से कभी नहीं डरता, इसीलिए इन लड़ाकू सैनिकों के परिवार हमेशा उनके सुरक्षित घर लौटने का बेसब्री से इंतजार भी करते रहते हैं।
Also, India's Operation Sindoor has been named as a decisive military victory by international defense experts also, including, I will name him, John Spencer, a prominent U.S. military veteran and head of urban warfare studies at the Modern War Institute in New York. Referring to the Pahalgam terror attack, Spencer described the campaign as swift and precisely calibrated and praised Prime Minister Narendra Modi's assertive stance against nuclear blackmail, highlighting the message that India will not tolerate such threats and will respond with precision and resolve. He asserted, India was not fighting for vengeance, it was fighting for deterrence, and it worked. He added that India's restraint is not weakness, but it is maturity. He further added that it imposed costs, redefined thresholds, and retained escalation dominance.
और अंतर्राष्ट्रीय प्रशंसा के स्वर में ऑस्ट्रेलियाई लड़ाकू विमान विश्लेषक और लेखक टॉम कूपर ने भी भारत की प्रतिक्रिया को स्पष्ट जीत बताया है। सोशल मीडिया पर कूपर ने जोर देकर कहा कि युद्ध विराम की ओर बढ़ने का पाकिस्तान का फैसला भारत की बेहतर सैन्य प्रतिक्रिया का सीधा नतीजा था।
Indian soldiers, they are the true heroes of our nation. We take great, great pride in them, and we would also like to give a grand salute to all these fighters serving our nation.
Sarhad pe chale, sarhad pe hame, awaaz lagani hai,
Bharat Mata! माथे पे तिलक जय हिंद लगावो मेरी निशानी है। सरहद पे चले सरहद पे हमें आवाज लगानी है।
Doing well, Calcutta.
माथे पे तिलक जय हिंद लगावो मेरी निशानी है।
और अब समय है अपनी क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष खबरें हैं।
Well, first in Chandigarh, beginning with that, which is the capital of both Punjab and Haryana, over 3,000 volunteers enrolled themselves as civil defense heroes. We have more on this from our correspondent.
जब देश पुकारे तो हैं तैयार हम।
कंधों से मिलते हैं कंधे कदमों से कदम मिलते हैं हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं।
यह केवल नागरिक सुरक्षा नामांकन अभियान नहीं था, यह कर्तव्य के प्रति एक उत्साहजनक आह्वान था। पंजाब के राज्यपाल श्री गुलाब चंद कटारिया के नेतृत्व में 3,000 से अधिक युवा नागरिक नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवकों के रूप में सेवा करने के लिए अटूट संकल्प के साथ आगे आए। सेक्टर 18 में टिगोर थिएटर और सेक्टर 17 में तिरंगा अर्बन पार्क में आयोजित इस प्रोग्राम में न केवल जबरदस्त प्रतिक्रिया देखी गई, बल्कि राष्ट्रीय गौरव और युवा दृढ़ संकल्प की भी लहर देखी गई। राज्यपाल की उपस्थिति से माहौल में और जोश भर गया था। भारत के उन गुमनाम नायकों की लंबी परंपरा को भी याद किया गया जिन्होंने बिना किसी पद या मान्यता के देश की सेवा की थी। राज्यपाल ने अतीत के उन अदृश्य योद्धाओं के बारे में श्रद्धा के साथ बात की जिन्होंने 1962, 1965 और 1971 के युद्धों के दौरान स्कूलों को बंकरों में बदल दिया, घायलों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और बिना किसी इनाम की उम्मीद के दिन रात काम किया। राज्यपाल ने कहा कि उनके पास कोई पदक नहीं था, लेकिन उनके अंदर भारत का दिल धड़क रहा था। उन्होंने सभी को याद दिलाया कि जब हमारे बहादुर सैनिक हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं तो नागरिक स्वयं सेवकों की जिम्मेदारी है कि वे हमारे राष्ट्र की भावना को हमारे भीतर से हमारी गलियों हमारे घरों हमारे मोहल्लों में सुरक्षित रखें। उन्होंने कहा कि नागरिक सुरक्षा केवल एक सेवा नहीं है, यह एक भावना है, एक पवित्र जिम्मेदारी है, मातृभूमि के आह्वान पर खड़े होने की शपथ है। लहराते तिरंगे के नीचे सैकड़ों लोगों ने न केवल युद्ध के समय बल्कि हर संकट में सेवा करने की शपथ ली। शपथ चाहे वह आपदा हो, आपातकाल हो या अराजकता में शांति की आवश्यकता हो, हम देश को समर्पित रहेंगे। कई लोगों के लिए यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था, एक ऐसा क्षण जब नागरिक होने का गहरा अर्थ हुआ। हजारों लोगों ने जैसे ही हस्ताक्षर किए उनकी आंखों में एक नया उद्देश्य झलक रहा था, देश प्रेम का उद्देश्य। परिक्रमा के लिए जलंधर से मैं राजेश बाली।
जोश दिल में जगाते चलो, जीत के गीत गाते चलो।
और अब चलते हैं केरल, जहां केरल सरकार ने एक व्यापक पहल ज्योति की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि 3 से 18 वर्ष की आयु के प्रवासी श्रमिकों के कोई भी बच्चे स्कूल से बाहर न रहें या सड़कों पर न घूमें। एक रिपोर्ट।
The program Jyoti will be implemented by the local bodies along with the schools in the respective regions. The scheme involves a door-to-door campaign coordinated by the local self-governments, teachers and community workers to identify and support migrant children's education and welfare. This ambitious program seeks to enroll all migrant children aged between 3 to 6 years in Anganwadis and those aged above 6 years in public schools across the state. Chief Minister Pinarayi Vijayan said that this initiative marks a significant step towards cultural and educational integration, reaffirming Kerala's commitment to inclusive development. Kerala is home to over 35 lakh migrant workers, many of whom live with their families and face significant challenges in accessing education for their children due to frequent relocations, language barriers and lack of documentation. The Jyoti program addresses these issues through a multi-pronged approach. It introduces a localized registration system linked with Aadhaar to accurately track migrant children's schooling status despite seasonal movements. Alongside educational enrollment, the initiative also provides health checkups, nutritional support and cultural inclusion activities to empower migrant families and uphold the children's fundamental right to education and well-being. Mayusha for Parikrama from Tiruvananthapuram.
और अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल।
Yes, first we'll talk about Thailand Open. Indian shuttlers here, Akarshi Kashyap and Unnati Hooda, advanced to the pre-quarterfinals with immersive victories in Bangkok this morning. Akarshi Kashyap secured a hard-fought victory over Japan's Kaoru Sugiyama in the women's singles round of 32, while Unnati Hooda defeated Thailand's Thamanwan Nitik Tikrai in another intense three-game battle. In the men's singles, world number 18 Lakshya Sen suffered a narrow defeat at the hands of world number 34 Nihat Nguyen of Ireland in the men's singles round of 32. Now also we'll provide our listeners the business updates. The benchmark domestic equity indices today ended with modest gains, supported by buying across most sectors following softer than expected inflation prints and easing geopolitical concerns. The 30 share index at the Bombay Stock Exchange Sensex rose 182 points or 0.22% to close at 81,331. The National Stock Exchange Nifty 50 advanced 89 points or 0.36% to settle at 24,667. In the global crude market, Brent crude was trading 1.1% down at $65.89 per barrel, and WTI crude was trading almost 1.2% down at $62.92 per barrel when reports last came in. In the Indian bullion market, 24-carat gold was trading down at 93,790 rupees per 10 grams and silver 999 fine was trading up at 96,990 rupees per kilogram when reports last came in.
और अब समय है उन व्यक्तियों को याद करने का जिनकी आज है पुण्यतिथि या जन्मदिवस जयंती. इस क्रम में सबसे पहले हम भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानियों को याद करेंगे.
On the 14th of May 1857, during the First War of Independence, Bahadur Shah Zafar set up a national government at Delhi. After the outbreak of the First War of Independence against British rule at Meerut on the 10th of May 1857, when the revolting sepoys of the British Indian Army came to Delhi and implored Bahadur Shah to accept their service, he responded to their appeal and assumed leadership of the uprising as the Emperor of Hindustan.
Along with his sons and other members of the royal family, Bahadur Shah went up to Chandni Chowk and addressed the patriotic forces as the supporters of the uprising regarded him as their legitimate sovereign. The uprising against British rule started in many parts of the country in the name of Bahadur Shah.
Bahadur Shah set up a national government at Delhi on the 14th of May 1857, and all Hindu and Muslim officers, Raos and Rajas were called to attend the court. He also desired cooperation from all, and thus sent circulars to the Jagirdars and Amirs calling upon them to join the war against the British. For the next 4 months, Delhi remained as the main center of the First War of Independence.
We remember freedom fighter Arun Chandra Guha, who was born on the 14th of May 1892 in Barisal, Bengal. Guha ran Saraswati Library, through which he published his writings to arouse national sentiment. Guha also published a weekly journal titled Swadhinta that was banned in 1930, and four of its editors were convicted for sedition by the British.
Arun Chandra Guha joined the Jugantar Party in 1906. He was arrested and detained multiple times for his participation in the activities of this party. He was also arrested during the non-cooperation movement in 1920. After his release, he became a part of the West Bengal Pradesh Congress Committee. Subsequently, Guha joined the All India Congress Committee in 1923.
Arun Chandra Guha was elected to the Constituent Assembly of India from West Bengal. He participated actively in the Constituent Assembly debates. He also served as a Member of Parliament in the 1st, 2nd and 3rd Lok Sabha. Guha was an avid writer. Some of his notable works include Aurobindo and Jugantar, Srishti o Sabhyata and Desh Parichaya. We also remember Sudhanshu Bimal Chanda, who hailed from Chittagong. Sudhanshu was an active member of the Anushilan Samiti. He was arrested for his revolutionary activities on the 31st of May 1935 and detained in the Chittagong jail. Put under village domicile at Keshavpur, Jessore in 1935, he died on the 14th of May 1936. We salute freedom fighter Sudhanshu Bimal Chanda.
हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकारों में एक जगदीश चंद्र माथुर का भी स्मरण हम कर रहे हैं, जिनकी आज पुण्यतिथि है। जगदीश चंद्र माथुर ने आकाशवाणी में काम करते हुए हिंदी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत में टेलीविजन की शुरुआत उन्हीं के दौर में वर्ष 1949 में हुई। हिंदी और भारतीय भाषाओं के तमाम बड़े लेखकों को वही रेडियो में लेकर आए। सुमित्रा नंदन पंत से लेकर रामधारी सिंह दिनकर और बालकृष्ण शर्मा नवीन जैसे दिग्गज साहित्यकारों के साथ उन्होंने हिंदी के माध्यम से सांस्कृतिक पुनर्जागरण का सूचना संचार तंत्र विकसित और स्थापित किया था। जगदीश चंद्र माथुर ने 6 वर्ष बिहार शासन में शिक्षा सचिव के रूप में सेवा दी। 1955 से 1962 तक आकाशवाणी भारत सरकार के महासंचालक के रूप में काम किया। 1971 से भारत सरकार के हिंदी सलाहकार रहे। उनकी प्रमुख कृतियों में शामिल हैं भोर का तारा, कोणार्क, ओ मेरे सपने, शारदीया, परंपराशील नाट्य और पहला राजा और जिन्होंने जीना जाना। भारत में पहले टीवी चैनल का शुभारंभ माथुर साहब के दौर में ही हुआ और उन्होंने ही दूरदर्शन नाम दिया इसे। उन्होंने कहा था, सरकार किसी भी भाषा से चलाई जाए पर लोकतंत्र हिंदी और भारतीय भाषाओं के बल पर ही चलेगा। हिंदी ही सेतु का काम करेगी। सूचना और संचार तंत्र के सहारे ही हम अपनी जनता तक पहुंच सकते हैं। जगदीश चंद्र माथुर का निधन 14 मई 1978 को हुआ था।
Moving forward, we are remembering Pierre Victor Auger, physicist. He worked in the fields of atomic physics, nuclear physics and cosmic ray physics. He's famous for being one of the discoverers of the Auger effect, which is named, of course, after him, Pierre Victor Auger. Working with cosmic rays, he discovered the concept of cosmic air showers. Very interesting. These air showers result from the collision between a high energy particle in the outer space and the outer layer of the atmosphere. Science lovers, this is specifically for you. Each collision produces millions of secondary interaction, and Pierre Auger Observatory, which is located in Argentina, named after him, of course, is designed to detect ultra high energy cosmic rays and to sponsor research as well on cosmic rays.
जी, महान भाषाविद, प्रख्यात विद्वान, राजनीतिक नेता तथा भारतीय धरोहर के मनीषी आचार्य रघुवीर को भी आइए करें नमन। आचार्य रघुवीर महान कोशकार, शब्दशास्त्री और भारतीय संस्कृति के उन्नायक थे। आचार्य रघुवीर ने कोशों की रचना कर राष्ट्रभाषा हिंदी का शब्द भंडार समृद्ध किया। सन 1946 में संविधान सभा का गठन होने पर 24 अप्रैल 1948 को डॉ रघुवीर मध्य प्रदेश और बरार क्षेत्र से सदस्य चुने गए। डॉ रघुवीर को भारत की संविधान सभा में शायद सबसे युगांतरकारी व्यक्ति माना जाता है। सन 1950 में उन्होंने संविधान सभा का पहला खंड हिंदी में प्रस्तुत किया, जिसे संविधान सभा को प्रस्तुत किया था। और अब याद करते हैं मृणाल सेन को, जो कि हिंदी के साथ साथ, हिंदी में तो कम लेकिन बांग्ला और उड़िया, तेलुगु समेत तमाम भाषाओं में फिल्मों का निर्माण किया, निर्देशन किया। उन्होंने भारत में समानांतर सिनेमा आंदोलन के अग्रणी के रूप में भूमिका निभाई। मृणाल सेन का जन्म पूर्वी बंगाल में 14 मई 1923 को हुआ था। कलकत्ता से भौतिक शास्त्र में पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, पत्रकारिता और साउंड रिकॉर्डिंग सरीखे कई काम सीखे। और फिल्मों की बात अगर करें शगुन, तो उनकी फिल्मों की लिस्ट बड़ी लंबी है, लेकिन एक फिल्म का गाना हम अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं।
Well, Mrinal Sen there. He has been honored with Padma Bhushan, and also the government of France, I'd like to talk about that, honored him with the Order des Arts et des Lettres, while Russian government also honored him with the Order of Friendship. He was also awarded the Dada Saheb Phalke Award, which is highest award for filmmakers here, for Mrinal Sen.
जी, और श्रोताओं, अब समय हो गया है आपसे अनुमति लेने का। देवेंद्र त्रिपाठी और शगुन को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की दीजिए आज्ञा। अगर आप ये कार्यक्रम दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in।
थैंक यू सो मच लिसनर्स फॉर ट्यूनिंग इन।
नमस्कार।